Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Hey, sir, it's good. It's good. Many people say it, right? Because they want to remove the things that are unpleasant and want to keep the things that are unpleasant in front. प्रिय वस्तु को चाहता है अप्रिय को तो घट वस्ति घट है घटो भाती घट दिखता है घट प्रिय है घट जो प्रिय है क्यों हमारे प्रयोजन सिद्ध करता है ऐसे घटते कर्मणा इति घट शरीरम इदम शरीरम घट है इस शरीर को शास्त्रकारों ने घट कहा घटते कर्मणा इति घट है परमार्थ का साधन होने से जैसे जल भरने का पानी भरने के लिए साधन होने से घट प्रिय है ऐसे परमार्थ के साधन होने से यह हमारा शरीर प्रिय है अनी बात तो अस्ति भाति प्रिय ये तीन वस्तु जो है ना संसार के पदार्थों में है हाँ इसे अस्ति भाति प्रिय कहो सत चित आनंद कहो आदि बात सत चित आनंद कहो अथवा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहो सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम ब्रह्म ये जो सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म कहो सात ज्ञान सच्चिदानंद ब्रह्म कहो अस्तिभाति प्रिय सब पर्यायवासी है एक ही ब्रह्म को समझाने के लिए शास्त्रकारों ने इसका नाम अलग अलग रखा वास्तव में ब्रह्म तो एक ही है ब्रह्म में न सत चित आनंद सत चित आनंद क्यों रखा है सत इसीलिए कहा असत से अलग करने के लिए चीत इसीलिए कहा प्रकाश अंधकार से अज्ञान से अलग करने के लिए आनंद इसीलिए कि अप्रिय से अलग करने के लिए यानी बात तीनों से अलग करके बतलाने के लिए कह दिया ब्रह्म कैसा है सत चेत आनंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म इस ब्रह्म का उपदेश चाहता है कौन नचिकेता तो नचिकेता के सामने कहा नचिकेता संसार के मनुष्य के सामने दो विद्या आती है एक श्रेय विद्या एक प्रेय विद्या दो विद्या आती है हाँ श्रेय विद्या सहने कौन सा आता है प्रेय विद्या कौन सा आते हैं श्रेय विद्या क्या करती है प्रेय विद्या क्या करती है प्रेय विद्या भी तुम साधक हो तुम्हारे सामने आएगी प्रेय विद्या तुम्हारे सामने आएगी प्रेय विद्या कहेगा तुम मेरे को अपनाओ प्रिय विद्या प्रिया त्वाम रोचति जहाँ संसार की वस्तु प्रिय लगती है ना वो प्रियता दो काम करती है याद रखना हमेशा एक तो बांधेगा दूसरा रुलाएगा प्रियता दो काम करती है याद रखना क्या क्या
एक बांधेगी और रुलाएगी
पहले प्रिय लगाएगा सुख बुद्धि करेगा फिर बांधेगा पैर बिछुड़ा करके
रुलाएगा
तो प्रिय विद्या दो काम करती है आपके पास आएंगे कहेगा हम तुमको सुख दिलाएंगे हाँ मेरे को अपनाओगे तो मैं तुमको सुख दिलाऊंगी कैसे सुख दिलाएगी कब बांध करके किससे बांध करके संसार के विषयों में बांध करके हाँ संसार के विषयों में बांधेगा कौन से रस्सी से बांधेगा प्रियता से बांधेगा आसक्ति से बांधेगा मोह से बांधेगा मोह से पैदा करके पोता पोती में मोह होता है कि नहीं होता है नहीं होता है पोता को देखते मन कितना प्रसन्न हो जाता है वो बंधन है हाँ जहां भी पोता पोती देखोगे घर के संबंधी देखोगे जो सेवा करने वाला देखोगे उसके प्रति मोह पैदा अपना आप ही हो जाता है पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ती है मोह में बांधेगा आसक्ति में बांधेगा राग में बांधेगा हाँ ये सब जो है ना बंधन कहते सुखानुभूति राग दुखानुभूति देशा योग दर्शन कहते राग किसको कहते जिसमें तुम्हारा सुख का अनुभूति हो सुख मालूम पड़ता है वही बांधेगा तो प्रिय विद्या कहती है मैं तुमको सुख दिलाऊंगी तुम अब मेरे को अपनाओ संसार में प्रियता है ना ये प्रियता क्या करेगा बांधेगा कैसे बांधेगा अरे सुख बुद्धि पैदा करके बांधेगा हाँ पराविद्या से पूछा तुम कैसे बांधना, तुम क्या करोगे? बोले मैं भी तेरे को सुख दिलाऊंगी। वो कैसे सुख दिलाओगे? तो बंधन से छुड़ा करके, हाँ, बंधन से छुड़ा करके। आप दोनों विद्या में से कौन सा विद्या ग्रहण करोगे, जो छुड़ाने वाला कि बांधने वाला?
छुड़ाने वाला।
छुड़ाने वाला करोगे ऐसा? जो छुड़ाने वाला चाहिए इनको, छुड़ाने वाला बंधन चाहिए, छुड़ाने वाला। परा विद्या, परास अपरास, परार अपरा, एक बंधेगा और एक छुड़ाएगा। तो छुड़ाने वाला विद्या नचिकेता मांगते हैं, बांधने वाला विद्या नहीं मांगते हैं, याद रखना है नहीं बात। तो छुड़ाने वाला विद्या क्या करेगा? संसार के विषयों में अनासक्ति पैदा करके, यानी वैराग्य पैदा करके, विवेक पैदा करके, तो तुमको संसार के बंधन से छुड़ाएगा। अभी साधक को विचार करना चाहिए कि हमको कौन सी विद्या चाहिए। हाँ, परा विद्या चाहिए, अपरा विद्या चाहिए। तो परा विद्या कौन मांगते हैं? परास कामान अनुयंती बाला, उनका बालक। बालक माने अविवेकी, अविवेकी ने अज्ञानी, अज्ञानी में संसारी। ये क्या चाहते हैं? परास कामान, बाह्य विषय कामान, पराग कामान, बाह्य विषयान, बाहर के विषयों को चाहता है कौन? बालक, अज्ञानी। देखो बालक शब्द का भी अर्थ ऐसा है ना, बालक संसार में है। बालक कहते हो किसको? बाल्यावस्था वाला को बालक कहते हैं। हम कहते ना बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। तो शास्त्र बालक उसको कहते हैं, अज्ञानी को। शास्त्र जो है ना बालक कहते हैं अज्ञानी को। क्यों? जैसे बालक का ना क्या अच्छा है क्या बुरा विचार करने की शक्ति नहीं होती है ना, ऐसे अज्ञानियों के संसार में रहने में विचार नहीं होता है। संसार अच्छा है कि असंसारी परमात्मा अच्छा है, नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, विकारी क्या है, निर्विकार क्या है, ये विचार करने की सामर्थ्य बालक को नहीं होता है। जैसे आपको होगा ना, ये सत्संगियों को होता है। योग नित्यानित्य वस्तु का विवेक कौन करेगा? सत्संगी करेगा। जड़ चेतन का विचार कौन करेगा? जड़ चेतन, जड़ चेतन। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्नी करता, हंस गुण कहे पारिहरी परिहरी बारी विकार। और जड़ चेतन दोनों मिला करके आपके सामने रखा है, गुण दोष दोनों मिला करके रखा है। संसार गुण दोषमय है, जड़ चेतनमय है। जड़ चेतन के बिना नहीं रह सकता, और चेतन के बिना जड़ के बिना चेतन नहीं रह सकता, चेतन के बिना जड़ नहीं रह सकता। दोनों मिलेगा तब संसार चलेगा, यानी बात। ये शरीर में दोनों है, इदम शरीरम क्षेत्रमिति अभिधीयते तद्जो व्यति तम्राहो क्षेत्र के तद्भुत बोला कि नहीं। ये शरीर जो है क्षेत्र है, क्षेत्र जड़ होता है, यानी बात। और क्षेत्र को जो जानता है वो चेतन होता है, उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रम जानाते थे क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्र क्षेत्र का मिलकर के संसार की यात्रा निर्वाह करते हैं। केवल क्षेत्र से भी नहीं चलेगा और केवल क्षेत्रज्ञ से भी नहीं चलेगा। जड़ असंग चेतन असंग होता है, जड़ चेतनहीन होता है, तो कैसे चलेगा? तो दोनों को मिला करके ही संसार की यात्रा निर्वाह करता है। तो पराविद्या अपराविद्या दोनों विद्या साधक के सामने चल करके आए हैं, और साधक दोनों का विचार करेगा कौन सा विद्या हमको अपनाना होगा, लेना होगा, कौन सा छोड़ना होगा, यानी बात। तो अविवेकी किस क्या करते हैं, बालक क्या करते हैं, प्रिय विद्या को लेते हैं, श्रेय विद्या को नहीं लेते हैं। अनिवा श्रेयान परां सा कामान अनुयंती बाला ते तस्मात परां पश्यति नांतरात्मन। बाहर का विषय देखता है, अंतरात्मा को नहीं देखता है। कश्चित धीर प्रत्यगात्मा नमक्षत व्यावृत सक्षु व्यावृत सक्षु अमृतत्व इच्छन। कोई ऐसे धीर पुरुष है जो अमृत की इच्छा से अपने विषयों की तरफ से संसार की तरफ से वृत्ति को हटा करके अंतरात्मा की तरफ ले जाता है। तो बाह्य विषयों की तरफ से आसक्ति को हटा करके अंतकरण की तरफ अपने वृत्ति को ले जाता है। तो ले जाकर क्या करते हैं, वो अंतरात्मा को दर्शन करने की इच्छा से ले जाते हैं। अंतरात्मा निच्छन, अंतरात्मा को जानने की इच्छा से। तो धीराहा के थे अंतरात्मा कौन सा था का धीराहा पुरुषाहा, धीर पुरुष आते हैं। धीर पुरुष क्या करते हैं, बाह्य विषयों की तरफ से वृत्ति को हटा करके अंतर्वृत्ति करते हैं। तो तुम कहोगे क्या भीतर ही परमात्मा बाहर नहीं है क्या, नहीं है? अरे श्रुति तो कहती है बाह्याभ्यंतर मजह, वो बाहर और भीतर दोनों में वो कैसे रहते गए थे, अजन्मा अजह। ये अजन्मा आत्मा को जानना होगा तो बाहर भीतर दोनों में, बाहर भी देखो अजन्म देखो, भीतर देखोगे परमात्मा देखोगे तो बाहर देखोगे शैतान देखोगे, बाहर भी तो ही परमात्मा है ना, बाहर भी तो परमात्मा है। हरिरीव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नैव भिन्नतनो इति जस्यमति परमार्थ गति स नरो भव सागर उद्धरति। भगवान भाष्यकार शंकराचार्य महाराज जी कहते हरिरीव जगत, ये जगत क्या चीज है कहते, हरिरीव हरि ही है जगत, जगदेव हरि आनी बात, जगत जो है ना हरि स्वरूप है। हरि तो जगतो नहीं भिन्न दोनों हो, ये दोनों भिन्न नहीं है, हरि या जगत दोनों एक ही है। इति जैसे मति, ऐसा जिसके मति हो गई, बुद्धि हो गई, निश्चय हो गया, स नरो भव सागर उद्धरति, वही मनुष्य संसार सागर से पार जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। तो मतलब क्या, सर्वम खलविदम ब्रह्म नियन अनास्ति किंचन वासुदेवम सर्वमिति। ये सब जगत जो वासुदेव भाई है, ऐसा नहीं समझना कि ऊपर परमात्मा रहता है, कौन है सातवां आसमान में, कहते हैं ना परमात्मा का है, मुसलमान मानते हैं ना सातवां आसमान में, हम लोग क्या मानते
सर्वम।
आपका वो जैन दर्शन कहते ना तुम्हारा कृष्ण जो नरक में है, बोलता है कि नहीं, तो नरक में तो रहेगा नहीं, नारद जीव का अंतर्जामी कैसे बनेगा, नरक में भी रहेगा स्वर्ग में भी रहेगा, हमारे ऐसा नहीं, नरक तुम्हारे दृष्टि से है, जेल खाना पापियों के लिए है, अपराध करने वाला के लिए जेल खाना है, वो जो सीपीआई उसमें रहता है कि नहीं रहता है, जेलर रहता है कि नहीं रहता, उसके लिए जेल खाना है क्या, अपराध करने वालों के लिए नरक है, जो अपराध नहीं करते के लिए उनके लिए स्वर्ग नरक दोनों एक ही है। आनी बात, वो एक मुसलमान थे ना, मुसलमान हज करके आया तो रोजा रखता है ना, रोजा के दिनों में रोजा रखा, एक दिन इसको जो है ना प्यास लगी, अभी पानी कहाँ पिए, सब दुकानें बंद है, सराय बंद है, तो सोचा घर में जाएंगे तब बीवी तो पानी नहीं देगी, क्यों रोजा रखियो, मुलोभी हो, हज करके आए हो, हजी हो, पानी भी तो खता करते हो रोजा की, डांट देगी। तो एक झुपकी लगाए, उसने कहा गंगा जी में जाएंगे, गंगा को दरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं
दरिया,
वहां जाएंगे गोसल भी करेंगे, स्नान को गोसल बोलता है, और पानी भी पी लेंगे। तो ऐसा किया, बीवी से कहा मेरे लुंगी तो दे, बोले क्या करोगे, बोले गुसल करने जाता हूँ दरिया में, अरे यहाँ कर लो ना, बोले नहीं आज मेरे का मेरा मन हुआ और दरिया में गुसल करने का, अच्छा जाओ। तो मलबी साहब जो है ना डुबकी लगाया, तो डुबकी लगा पानी पी रहा था, इतने कांटेदार मच्छी गला में फंस गया, कांटेदार दोनों में कांटा, छोटे छोटे मच्छी होते हैं ना कांटेदार, आप क्या करें। तो ऊपर आया, हाँ तो आ कर रहा था, एक आदमी को बोला इधर तो आ देख, तो उसने देखा एक मच्छी फंसा है, क्या करे कैसे हुआ, तो उसने एक बार वो छोटे से कैंची ला करके काटे काट करके मच्छी को निकाला। मलोजी साहब कैसे हुआ, अरे भाई हमने सोचा खुदा सातवां आसमान में रहता है, ओ खुदा या खुदा तू पानी के अंदर घुस गया है, मेरे को बताया कि मैं पानी पीता हूं, खुदा से कोई बात छिपती नहीं, चाहे सातवां आसमान में मानो चाहे पानी के अंदर मानो, वो सर्वत्र व्यापक है, याद रखना। पानी के अंदर नहीं मानोगे, सातवां आसमान में मानोगे तो खुदा देखेगा, वो हमारे एक दृष्टांत देना संत लोग, एक मियां और एक भैया दोनों बाजार जा रहा था, तो दोनों में तकरार हो गया, मियां कहता हमारा खुदा सबसे बड़ा है, खुदा सबसे बड़ा है, तो भैया कहना हमारा राम सबसे बड़ा है, हाँ तो दोनों में हो गया, राम तेरा राम तो मंदिर में रहता, हमारा खुदा तो सातवां आसमान में रहता है, सबसे ऊपर रहता है इसीलिए बड़ा है। तो होते 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 आखिर में क्या किया जाए, कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे निश्चय किया जाए, बोले इस पेड़ पर चढ़, तू बोलना भी खुदा सबसे बड़ा है तो खुदा तेरी रक्षा करेगा, और हम बोलेंगे राम हमारा बड़ा है तो राम हमारी रक्षा करेगा, चल। तो जो था ना भैया तगड़ा था, पहलवान था, वो सोचता इसके सामने से माना करो तो फिर पीट ही देगा, तो डर डर के मार से स्वीकार किया, हाँ ठीक है ठीक है। तो पहले जो है ना राम को मानने वाला कूदा ऊपर चढ़ा, पेड़ के ऊपर चढ़ा, पेड़ पर चढ़ करके बोला जय जय श्री राम, करे कूदा तो भगवान ने उसकी रक्षा की, क्यों भगवान तो व्यापक है, सब अंतर्यामी है, उसका हमारे पर विश्वास है, अगर विश्वास तोड़ देंगे तो मेरे को कोई मानेगा नहीं, ये तो भगवान के विश्वास है। अब मुसल्ला से कहता तू कूद, अब डर गया, इसका राम तो सब जगह में रहता है, मंदिर में रहता है, फलाना में रहता है, हमारा खुदा तो सातवां आसमान वहां से हमको देख रहा है कि नहीं देख रहा है, और नहीं देखेगा बचाएगा कैसे। तो डर के मार से चढ़ा 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 और कांप रहा कांप रहा कांप रहा, और बोला चलो हम दोनों का नाम लेते, हाँ जिसने जो बड़ा होगा बचाएगा, जय जय राम खुदैया, समझे कि नहीं, जय जय राम खुदैया करे, खुदा ना राम ने बसाया ना खुदा ने बसाया, क्योंकि उसका विश्वास ही नहीं था। हाँ बात, ऐसे भगवान जो है ना सर्वत्र रहता है, हाँ जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत, संपूर्ण जगत भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। हाँ एक महात्मा वो भिक्षा करके लाते हैं, कुत्ता के ऊपर रख करके खाते हैं, तो एक दूसरा एक आदमी देख करके हंस रहा था, तो महात्मा बोले विष्णुपुरे सिजो विष्णु विष्णु खादत विष्णवे कसम हसशिरे विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत, विष्णु जो कुत्ता है उसको पर मैं विष्णु को रखा रोटी को रखा, विष्णु परे स्थितो विष्णु हूँ, विष्णु के ऊपर विष्णु खादते विष्णवे, विष्णु विष्णु को खा रहा है, खाने वाला भी विष्णु और भक्ष्य जो है रोटी वो भी विष्णु है, विष्णु खाता था विष्णु भी कथम हंसशिरे विष्णु, ये विष्णु तो क्यों हंस रहा है, सर्वम विष्णुमयम जगत, सर्व जगत विष्णुमय आई बात तो इस हरियम हो गया देकर आया खाने बैठते हैं ना खाने बैठने से पेट भर जाता है ना ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति।